옴 샨티. 아프 서비 कुमारों को देखने के पश्चात ये अंदर से जरूर आता है कि आप सभी को देख करके ये जगदम्बा भवन में इतने सारे कुमार बैठे हुए हैं भट्टी के लिए, तो ये अवश्य निश्चित है कि अव्यक्त बाप दादा आप सभी कुमारों को ऊपर से देख रहे हैं। बाबा आप सभी को ऊपर से देख रहे हैं और देख देख बाबा खुश भी हो रहे हैं, समझा? क्यों बाबा खुश हो रहे हैं? क्योंकि बाबा को पता है कि एक एक कुमार को कुमार बनकर के रहने के लिए बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ी है। सारे तपस्वी है यहां, कौन बैठे हैं? सारे तपस्वी बैठे हुए हैं, कोई साधारण आत्माएं नहीं है। बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ी, समाज के साथ भी युद्ध करना पड़ा, घर वालों के साथ भी क्या करना पड़ा। ऐसे ही महावीर नहीं बने हैं, घर वालों से भी युद्ध करना पड़ा, बाहर वालों से भी युद्ध करना पड़ा, और उस युद्ध में जीत प्राप्त करके आज हम कुमार रहे हैं। कुमार रहना ऐसा कोई साधारण बात नहीं है। विशिष्ट एज होने के बाद, विशिष्ट आयु होने के बाद पहला लड़ाई जो करनी पड़ती है, वो पहला पेपर कौन सा आता है? बड़ा पेपर, बड़ा जला अपन अवघड़ पेपर मानते हो, बड़ा पेपर कौन सा आता है? शादी का, समझा? कौन सा आता है? शादी का। और हमें बड़ी खुशी है, मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ सभी ने शादी का पेपर क्या कर दिया है? पास कर दिया है। सब ये जीत प्राप्त, विजयंती कुमार है, सभी ने जीत प्राप्त कर लिया है। शादी के पेपर को पास करना ये कोई सामान्य आत्मा का काम, ऑर्डिनरी का काम नहीं है। इसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आत्माएं ही चाहिए। ऑर्डिनरी व्यक्ति शादी के पेपर में फेल ही हो जाता है, क्योंकि अनेक सारी बातें होती है। शादी के पेपर के लिए मनुष्य आत्मा का ये संस्कार बना हुआ है। मैं आपको क्या बताऊं, शादी का पेपर पास करना ये सामान्य आत्मा का काम ही नहीं है। इसका कारण ऐसा है कि 5000 वर्ष से शादी की परंपरा चलते आई है। शादी के परंपरा को इतिहास कितने साल का है? 2-5 साल की बात नहीं है, 50-100 साल की बात नहीं है, ये बात कितने साल की है? 5000 वर्ष से ये सिलसिला चलते आया है। नारायण ने भी लक्ष्मी से शादी की थी, समझा? नारायण ने भी क्या किया था? लक्ष्मी के साथ शादी की थी। लेकिन अभी अगर नारायण बनना है तो लक्ष्मी नहीं चाहिए, समझा? क्या लक्ष्मी आपको मिलने वाली नहीं है। अगर यहां लक्ष्मी का त्याग करेंगे तो वहां लक्ष्मी मिलेंगी, समझा? यहां त्याग करना पड़ता है, और ये अवश्य है। आप सभी सम्माननीय अवश्य है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पेपर होता है। आयु आने क्या नहीं, आप एक एक के सामने क्या कहानी होंगी, एक एक के पास बहुत बड़ी कहानी है होंगी। एक एक को खड़ा करो तो एक एक के पास, बाबा जो कहता है मेरा एक एक बच्चा लाखों के बराबर है, लाखों के बराबर अवश्य है। आप सभी ने शादी के पेपर को पास किया है, और वो सामान्य नहीं है। एक तो ये आत्मा का 5000 वर्ष का संस्कार रहा है कि पुरुष स्त्री के साथ ही जीवन जीता है, और यहां घर गृहस्थी में रह करके स्त्री न होते हुए अकेला रहना, ये अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है। दुनिया का ये रिवाज है, अगर आपको अकेला रहना है, अगर आपको ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करना है, तो दुनिया की परंपरा क्या है? भगवा कपड़ा डालो। हमको भी घरवाले कहते थे, अगर तेरे को शादी नहीं करनी है तो भगवा कपड़ा डालो और जा, तो हमको कोई पूछेगा नहीं, समझा? सफेद कपड़े डाल के घर में बैठे हो तो लोग तो आएंगे ना, समझा ना? तो ये बात तो सामने अवश्य आएंगी और आती है, तो आप एक एक ने इस बात को फेस किया हुआ है। इस और इसमें अनेक प्रलोभन भी बहुत होते हैं। हमने देखे बहुत कुमार है, क्या उनको बोले हम शादी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन सामने से उनको ऑफर आती थी कि 1,00,000 हुंडा मिलेगा और 1 2-व्हीलर गाड़ी मिलेंगी, तो कई कुमारों ने मंजूर किया कि ये चाहिए हमको करके, समझा? 21 जन्म की बादशाही को लात मारी और होंडा गाड़ी और 1,00,000 ले लिया, समझा? तो आप सभी ने तो ये पेपर को पास किया है ना, आपका जितनी महिमा करे कम है, आपने बहुत बड़ा त्याग किया है। बिना शादी के इस कलयुगी दुनिया में रहना ये बहुत बड़ी बात है, समझा? लेकिन एक बात अवश्य कुमारों को याद रखनी है, एक बात अवश्य याद रखो कि अविवाहित और ब्रह्मचारी दोनों में महान अंतर है। लोगों को आप ब्रह्मचारी दिखाई देने चाहिए, अविवाहित नहीं। ऐसे भी कई दुनिया में आज तो फैशन है, आजकल शादी न करने का भी फैशन निकला है, और कई ऐसे लोग हैं कि बोले हम शादी नहीं करेंगे, किसने झंझट करने को कहा है? कोई जीवन में लक्ष्य नहीं, एम नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये जीवन का आनंद लेने के लिए बोले हमको शादी नहीं करने की है, तो इसमें हमारा नंबर नहीं चाहिए। हमने देखे अविवाहित लोग भी देखे हैं, और वो जो अविवाहित होते हैं वो विमजिकल होते हैं। क्या होते हैं? विमजिकल होते हैं, और वो प्रसिद्ध होते हैं सारे लोगों के बीच में। भाई वो क्या, उसकी शादी विधि नहीं हुई, दिमाग थोड़ा सा सही हो गया है, तो वे टाइप का हमको ब्रह्मचारी ही नहीं बनना है, समझा? हमें ब्रह्मा कुमार बनना है। क्या बनना है? पक्का ब्रह्मा का कुमार। हमने निश्चय करके ब्रह्मचर्य को पालन किया है, टारगेट रख करके पालन किया है, परमात्मा के श्रीमत के अनुसार जो पवित्रता को धारण करते हैं वही सतयुग में आते हैं। ये बात आप अंडरलाइन करो। 5-6 मास के पहले बाबा ने साकार वाणी में कहा था कि दुनिया में तो ऐसे ब्रह्मचारी रहने वाले बहुत लोग हैं, वो सतयुग में नहीं आते हैं, जो श्रीमत के आधार पर पवित्रता की धारणा करते हैं वही देवपद के लायक होते हैं। तो हमने जो पवित्रता के व्रत को धारण किया हुआ है तो वो श्रीमत के आधार पर हमने पवित्रता को धारण किया है, समझा? और ये एक बात को तो हमने दुनिया लोक लाज कुल मर्यादा, यहां लोक लाज को भी छोड़ना पड़ता है, लोग क्या कहेंगे? अरे आप कुछ भी करो लोग तो कहने ही वाले हैं, कहा ना? एक खेचर था, खेचर गधा और घोड़े के बीच में होता है, तो उसके ऊपर क्या हुआ था, उसको लेकर के एक बाप और बच्चा दोनों जा रहे थे। तो लोगों ने देखा, लोगों ने कहा अरे इतना खेचर बाजू में है फिर भी ये पागल लोग उसको पकड़ करके लेके जा रहे हैं। तो ऐसा सुनने के बाद फिर क्या हुआ, जो बाप था ना वो खेचर के ऊपर बैठ गया और वो चलने लगे। तो वो जैसे चलने लगे तो लोग कहने लगे अरे देखो कैसा बाप है, बोले बच्चा पैदल चल रहा है और बाप क्या हुआ है बैठ करके जा रहा है। तो बाप बोला ये तो गलत बात है। फिर क्या हुआ, बाप नीचे आया और बच्चे को उसके ऊपर बिठाया और वो आगे चलने लगे। तो लोग बोले क्या पागल है, बोले बच्चा बाप को पैदल भेज रहा है और खुद इसके ऊपर बैठा हुआ है। अभी बोले क्या करे, तो बच्चा और बाप दोनों भी वो खेचर के ऊपर बैठ गए और चलने लगे। तो लोग बोले क्या आदमी है, बोले वो खेचर की जान जा रही है और दोनों भी बैठे हुए। तो आप कुछ भी करो दुनिया तो नाम रखने ही वाली है ना। तो ये लोकलाज का पेपर भी आपने पास किया है, नहीं तो बोलते अगर ऐसा रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो ये पेपर तो आप हम सभी ने क्या किया है, पास किया, बहुत बड़ा पेपर है। और ये भगवान के श्रीमत के अनुसार हमने इस बात को पास किया है, समझा। ये भी बहुत बड़ी बात है, बाबा ने कहा है और हमने किया है। अभी एक बात आपके बुद्धि में रखना अत्यंत आवश्यक है वर्तमान समय। मेरे सामने जब ये शादी की बात आई तो उस समय मैंने क्या संकल्प किया वो मैं आपको अनुभव बताता हूं। कि जब ये बात बड़े फोर्स से आई, समाज के तरफ से भी हमला हो रहा था, माता पिताओं के तरफ से भी और सब रिश्तेदारों से भी बहुत बड़ा हमला हो रहा था कि शादी करनी चाहिए, और मैं तो घर में बड़ा था, बड़े लड़के को तो बात ही मत पूछो। तो सारा जबरदस्त सा हल्ला चल रहा था और मेरे सामने फैसला करने की बात आई तो मैंने एक दृढ़ निश्चय किया। मैंने कहा अभी फैसला करने का है, अगर आपको शादी करने की है तो भले शादी करो, चार छह बच्चे पैदा करो और वो जीवन जियो। और अगर शादी नहीं करने की है और अगर ब्रह्मा कुमार ही बनने का है तो मैंने दृढ़ निश्चय किया कि अगर मुझे ब्रह्मा कुमार बनने का है तो मैं नंबर वन ब्रह्मा कुमार बनूंगा। क्या नंबर वन ब्रह्मा कुमार बनूंगा, लूंगा सुंगा ब्रह्मा कुमार नहीं बनना, समझा ना। इसलिए जी रहे कि मर नहीं रहे, समझा। तो ऐसे लूंगा सुंगा ब्रह्मा कुमार नहीं बनने का है, बनना है तो नंबर वन ब्रह्मा कुमार बनूंगा, नहीं तो शादी करके बाल बच्चे पैदा करूंगा, समझा। तो ये पक्का होना चाहिए, अगर ब्रह्मा कुमार ही बनने का है तो चारों सब्जेक्ट में परफेक्ट पास होना चाहिए, ज्ञान योग धारणा सेवा चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स होने चाहिए, पांचों विकारों पर संपूर्ण विजय प्राप्त करनी चाहिए। एक विकार अभी भी बचा है, अगर एक विकार भी आपके अंदर अगर बचा हुआ होगा विशेष मात्रा में, अंत में वही विकार आपका घात करेगा। यह 101% है। माया जो आती है ना, माया आने का एक तरीका होता है, माया ऑब्जर्वेशन करती है, देखती है कि इसको कैसा फंसाने का, इसको कैसा आउट करने का, इसको कैसा फेल करने का। ये माया को पक्का पता है कि ये किस बात में कमजोर है, समझा। कोई खान पान में कमजोर होगा तो उसके सामने खान पान का ही पेपर आएगा, कोई दृष्टि वृत्ति में कमजोर होगा तो उसके सामने दृष्टि वृत्ति का ही पेपर आएगा, कोई को लोभ का संस्कार ज्यादा होगा तो उसके सामने लोभ का ही पेपर आएगा। तो वो काम में कभी फंसने वाला नहीं है, वो क्रोध में भी फंसने वाला नहीं है, लेकिन अगर उसको पता पड़ा ना इतना पैसा मिलने वाला है तो कुछ भी करने को तैयार होगा। तो लोभ में किसको फंसाने का, किसी का मोह में होता है, किसी का किसी में इतना जबरदस्त मोह होता है, और माया को यह 100% पता होता है किसके अंदर क्या कमजोरी है। यह आप अवश्य गारंटेड ध्यान में रखो कि हर एक आत्मा में एक विशेष गुण होता है और एक विशेष अवगुण भी होता है। आपके अंदर एक विशेष गुण ऐसा होगा जो 16 कला में से एक कला आपके अंदर अवश्य अभी भी है, इसके लिए तो बाबा ने आपको निकाला है। सर्वजरी बुडाला ना तरी एक शिंडी राहते, आणि शिव बाबा संगमगावर कलयुगात जेव्हा येतात तेव्हा ती शिंडी धरूनच वर आपल्याला काढतात। शिंडी म्हणजे काय, 16 कलेपैकी एक कला, ज्या कुठला तरी एक गुण विशेष आपल्यामध्ये शिल्लक राहिलेला असतो। सगळी अमावस्या होत नाही, सगळी अमावस्या कधीच होत नाही, थोडा टिमटी माता दिया रहता है, कुछ ना कुछ अंश वंश रहता है सत्युग का, और उसको ही पकड़ करके बाबा ऊपर उठाता है। तो ये विशेष गुण तो हम हर एक आत्मा के अंदर है, लेकिन आप अगर अपने आप को खोजेंगे, अगर अपने आप का सर्च करेंगे, समझा, अपने आप का सर्च करना बहुत बड़ी बात होती है, ये सामान्य बात नहीं। खुद का सर्च करना, दूसरों का सर्च करने की हमको आदत है, किसी को भी खड़ा करो हम 5 मिनट में बताएंगे इसमें क्या अवगुण है करके। अपने साथीदार को अगर खड़ा करेंगे तो आप उस पर लेक्चर दे सकते हैं इसमें क्या क्या अवगुण है, लेकिन आपको कहो कि तुम्हारे अंदर क्या अवगुण है तो पता नहीं। और ये नेचर ही है, इसमें क्या दो, ये नेचर है कि हम हमारा मुखड़ा देख ही नहीं सकते है। क्या आप आपका चेहरा देख सकते हैं? क्या कौन है क्या यहां पर जो अपना मुखड़ा देख सकता है? हाँ, ये नेचुरल है कि हम हमारा मुखड़ा देख नहीं सकते हैं। हमको हमारा मुखड़ा देखने के लिए क्या करना पड़ता है? हाँ, आईने का आधार लेना पड़ता है। आरसा शोधाव लागतो तेव्हा कळतं आपल्या तोंडावर काय लागलंय ते, समजलं ना? वैसे नजर नहीं आता है, वैसे अपना अवगुण भी हमको नजर नहीं आता है, और माया के पास इसका रिकॉर्ड परफेक्ट होता है। तो वो अवगुण पहला ढूंढना होता है, कुमार को भी पहला मेरा क्या अवगुण है, मैं किस बात में कमजोर हूं, ये मुझे परफेक्ट पता होना चाहिए कि दृष्टि वृत्ति में मैं अभी तक कमजोर हूं, अभी भी मेरी दृष्टि वृत्ति जाती है, अभी भी सिनेमा देखने की दिल होती है, अभी भी गलत कादंबरी जो है वो कादंबरी को पढ़ने की आदत भी होती है, नावेल्स पढ़ने की आदत अभी भी किसकी बनी हुई है। अगर बाबा का बनना है तो बाबा को दूसरा नहीं चलता है, ये आप हमेशा अंडरलाइन करके रखो। गॉड इज ए जलसी वाइफ, समझा? उसको अपने पति ने अगर दूसरे तरफ नजर भी किया, किसी और के साथ बात भी किया ना, तो इसको जलन हो जाता है, समझा ना? तो ऐसे भगवान को अगर उसका बच्चा और किसी से कनेक्शन जोड़ रहा है, ये अगर भगवान देखता है तो उसको सहन नहीं होता है, समझा? आप कहेंगे किसको पता, कोई को भी मालूम नहीं है, ये तो मेरा अंदर का कनेक्शन है, समझा? तो आपके अंदर के कनेक्शन को शिव बाबा अच्छी तरह से जानता है, समझा? इसीलिए किसी से भी प्यार नहीं करना चाहिए। हां, रूहानी प्यार सभी से करना चाहिए, जिस्मानी प्यार किसी से भी नहीं होना चाहिए। एक बाबा के सिवाय किसी के साथ भी हमारा कनेक्शन नहीं चाहिए। रग रग में, हमारे रग रग में बाबा ही बसा हुआ हो, सिवाय बाबा के कोई, भले संबंध हजारों के साथ है। ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा, नंबर वन दुनिया की नंबर वन सोल, और नंबर वन कैसी बनी? अरे बाबा ने इन बहनों को, ये दादियों को, ये कन्याओं की कितनी पालना की, उन्हों की इतनी पालना की करके तो रहे ना। अगर बाबा पालना नहीं करता तो कौन रहा होता? ये तो बड़े बड़े घर की कन्याएं थी, वो कई साधारण घर की नहीं थी। तो इतनी बड़ी घर की कन्याओं को बाबा ने रोक के कैसा रखा? तो बाबा का हमेशा एक संकल्प रहता था कि जो उनको लौकिक घर में मिल रहा है वो सभी के सभी मैं यहां पर इनको दूं। पिस्ते बादाम खिलाए बाबा ने इनों को, सच्ची घी की जलेबी बना करके खिलाया, क्या नहीं खिलाया। एक महारानी के जैसी, राजकुमारी के जैसी इन दादियों की पालना की बाबा ने, इन बच्चियों की पालना की, इसलिए वो रहे। नहीं तो घर में भाग गए होते ना, बोलते ये यहाँ क्या अवस्था है, हमको तो घर में ऐसा मिलता है। तो जो तुमको घर में मिलता है वो सभी बाबा ने यहाँ खिलाया। इतनी जबरदस्त पालना की, स्थूल सूक्ष्म सभी पालना की। लेकिन जब जाने का टाइम आया, जब शरीर छोड़ने का टाइम आया, तो बाबा ने किसी को भी याद नहीं किया कि निर्मल शांता को बुलाओ, वो बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी को बुलाओ, ऐसा बाबा ने कहा क्या? हाँ, कोई को भी याद नहीं किया बाबा ने। इन दादी और तीन चार बहनें सामने थी, एक दो भाई थे जो आए हुए थे बाबा के पास, बाबा ने किसको बुलाया नहीं था, जा किसी को भी बाबा ने याद नहीं किया। उस दिन सवेरे बाबा की तबीयत खराब हुई थी, 18 जनवरी के सवेरे को बहुत तबीयत बाबा की खराब हुई, और वो सारे सृष्टि चक्र में एक ही दिन, पूरे संगम युग में एक ही दिन ऐसा था कि जिस दिन बाबा मुरली चला नहीं सके, एक ही दिन ऐसा था कि जिस दिन बाबा मुरली चला नहीं सके। नहीं तो हर एक दिन बाबा किसी भी स्थिति में हो, मुरली के समय बाबा हाजिर हो जाते थे। और ऐसे वैसे नहीं, करेक्ट 6 बजे बाबा का टाइम था। हम देखते थे कि हिस्ट्री हॉल का जो दरवाजा था, वो दरवाजे के ऊपर एक घड़ी लगी हुई थी, और वो चाइनीज घड़ी थी, चाइना की घड़ी थी। और वो घड़ी की ऐसी विशेषता थी कि उसमें एक, जरा अपन चिमनी मानतो, समझ लेना, एक चिमनी होती थी घड़ियाळामध्ये। तो वो चिड़िया क्या है, वो चिड़िया अगर 2 बजते हैं तो चिड़िया बाहर आती थी और च्यू च्यू करती थी, और उधर ठोके पड़ना शुरू हो जाता था। तो जब बाबा मुरली के लिए क्लास में आते थे तो बाबा हिस्ट्री हॉल के दरवाजे में खड़े हो जाते थे, ऐसा पीछे हाथ डाल करके दृष्टि देते थे, और उधर च्यू 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 6 बार होता था। करेक्ट 6 बजते थे और बाबा मुरली को हाजिर हो जाते थे। इतना बाबा टाइम पर एक्यूरेट भी था और नियमित भी था। कभी बाबा ने एक दिन भी मुरली मिस नहीं किया। देखो, मुरली चलाने का मिस नहीं किया साधारण बात नहीं है। बाबा को तो मुरली चलानी थी, और हमको क्या करना पड़ता है, सुननी है। हमको मुरली क्या करनी है, सुननी है। तो चलाने वाला मिस कर सकता है या सुनने वाला, हो सकता है चलाने वाला मिस करे, लेकिन वो कभी मिस नहीं करता है, सुनने वाले मिस करते हैं। बाबा ने कभी मुरली मिस नहीं। 19 तारीख को, 18 जनवरी को जब बाबा ने पहला दिन था, तो बाबा उठ नहीं सका, चल नहीं सका, तो टेम्परेचर भी बाबा को बहुत था। तो बड़ी दादी प्रकाशमणि बाबा को कहती है, देखो अंतिम दिन की स्थिति भी कैसी रही बाबा की। प्रकाशमणि दादी बाबा को कहती है कि बाबा, क्योंकि उनको पता पड़ा कि सारे संगम युग के इतिहास में ऐसा दिन कभी भी नहीं आया कि बाबा होते हुए बाबा ने मुरली नहीं चलाई, और आज ये क्या हो गया। उनको भी बहुत बड़ा धक्का लगा था। बाबा को भी अंदर से संकल्प चल रहे थे, कि आज मुरली नहीं चल सकी, तबीयत ऐसी थी। तो दादी बाबा को कहती है, प्रकाशमणि दादी बाबा को कहती है कि बाबा मैं डॉक्टर को बुलाऊं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर को बुलाऊं। तो बाबा क्या कहता है, हे बच्ची मैं तो सिविल सर्जन से बात कर रहा हूं, मैं तो बड़े सर्जन के साथ बात कर रहा हूं, और आप ये डॉक्टर की क्या बात करती हो, समझा। मैं तो उस डॉक्टर के साथ बात कर रहा हूं, सुप्रीम डॉक्टर के साथ बात कर रहा हूं। तो बाबा का नशा क्या था, शिव बाबा का और ब्रह्मा बाबा का ऐसा संवाद चल रहा था, अंतिम समय भी संवाद चल रहा था। बाबा शिव बाबा क्या कह रहा है, बाबा क्या कह रहा है, और फिर उसके बाद बाबा ने ही अपने आप को सवार लिया। फिर उस दिन शाम को 8 बजे बाबा ने बेल बजाने को कहा। मुरली जब चलानी होती थी मधुबन में बेल बजाया जाता था, जब सबको इकट्ठा करने का है तो बेल होता था, बेल बजाते तो सब आ जाते। 9 मुरली का टाइम 9 बजे का होता था, रात्रि क्लास का 2 समय मुरली चलती थी, एक सवेरे और एक रात्रि। उस समय मधुबन से जो पोस्ट आता था उसमें मॉर्निंग की मुरली अलग होती थी और रात्रि क्लास की मुरली अलग होती थी, दो मुरलियाँ एक दिन की आती थी। तो 9 बजे बाबा हमेशा मुरली चलाते थे, उस दिन बाबा ने 8 बजे ही बेल बजवाया और 8 बजे रात्रि को बाबा ने सारी मुरली चलाई। ऐसी मुरली चलाई कि सारा रिपोर्ट उसमें है, बच्चे खिरखंड होकर के रहना, आपस में कभी लून पानी नहीं होना, या सारी ऐसी इतनी सुंदर सुंदर शिक्षाएं बच्चों को दी। और पूरी होने के बाद जब बाबा लास्ट में जाते रहे, जब बाबा मुरली पूरी करके जाते थे तो फिर बाबा वो जो दरवाजा है हिस्ट्री हाल का मधुबन का, वहाँ फिर बाबा खड़े हुए और अंत में बाबा ने कहा, हे बच्चे निराकारी निर्विकारी और निरअहंकारी बनना। ये अंतिम महावाक्य है, जैसे गीता में नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा है, वहां गीता खत्म हो जाती है। जब अर्जुन को मोह हुआ इसलिए गीता सुनाई, और जब अर्जुन लास्ट में कहता है भगवान मेरा मोह खत्म हुआ है, तो उसने गीता सुनाना समाप्त किया। उसमें जैसा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा आता है, ऐसा ये प्रैक्टिकल गीता में निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी, ये 3 शब्द बाबा ने कहे और कहा, अच्छा बच्चों को विदाई। हर मुरली में बाबा कहता गुड नाइट, याद प्यार देता बच्चों को, याद प्यार और गुड नाइट कहता। उस दिन बाबा ने कहा विदाई। तो ये बच्चों के लिए बाप की क्या थी, विदाई थी। फिर बाबा वो हिस्ट्री हाल में आने वाले नहीं थे, वो अंतिम चरण। तो अंतिम में भी बाबा की स्थिति कितनी ऊंची और कितनी महान थी। तो ये हमको भी, हमारे सामने भी, हमको अभी ये चेक करना है, अभी अंतिम समय सभी का बहुत नजदीक आ रहा है, टाइम बहुत चेंज हो रहा है, समय बहुत चेंज हो रहा है। ये हम जब से ज्ञान में आए, तो मेरा ये विचार मंथन का हमेशा टॉपिक रहा कि वर्तमान समय संगम युग में कौन सी मोमेंट चल रही है, क्या मोमेंट वर्तमान समय चल रही है, या हमेशा हम भी देखते रहे। तो जब बाबा ने शरीर छोड़ा था उस समय भी मेरा स्ट्रांग संकल्प रहा। हम 2-3 बार साकार बाबा को भी मिले थे, और उस समय 10-10, 15-15 दिन रहते थे मधुबन में, आज के जैसे 2-3 दिन का नहीं था। उस समय कम से कम 10 दिन तो रहना ही है, क्योंकि आना ही इतना मुश्किल होता था, वो बार बार नहीं आ सकते थे। तो 10-15 दिन मधुबन में रहते थे। मैं तो अच्छी तरह बाबा के सामने बैठ करके अमृत बेला किया। 1968 के समय स्वयं बाप दादा अमृत बेला का योग कराते थे, बाबा अमृत बेला के लिए सामने बैठते थे और बाबा योग कराते थे। सोचो आप वायुमंडल कैसा होगा, जिसको याद करना है। और बाबा कहते थे उस समय, हे बच्चे अभी परम धाम में क्या है, मैं तो यहां आया हूं, मुझे यहां स्वर्ग की स्थापना करनी है। और बाबा वाणी में भी कहता था कि मुझे साकार रथ में याद करो, मुझे निराकार को साकार में याद करो, ऐसा बाबा कहते थे। और मैं उस समय हमारे बोर्ड पर लिखता था, साकार ब्रह्मा के तन में निराकार बाबा याद है, ऐसा लिखते थे। तो बाबा था ही, बाबा कहता था मुझे अगर यहां स्वर्ग बनाने का है तो मैं वहां बैठ के क्या करूंगा, ऐसा उस समय बाबा कहते थे। और बाबा की मैक्सिमम पीरियड, मैक्सिमम टाइम ब्रह्मा के शरीर में पद्रामणि बहुत समय तक बाबा की होती थी। और बाबा जब अमृत बेला योग कराते थे, सोचो आप जिसको आपको याद करने का है वो आपके सामने बैठा है, वो आपके सामने बैठा है और चुंबक बन करके वो आप एक 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 आत्मा को खींच रहा है। ऐसा बाबा जब अमृत बेला टांग पर टांग चढ़ा के ऐसा बैठता था, सोचो बाबा का आसन भी कैसा था, उनको ऐसा चेयर था क्या, पीछे अभी तो कुर्सी भी है और तकिया भी है, समझा। और बाबा को तो कुछ भी नहीं था, उनकी आयु 91 साल की थी, पीछे कुछ भी नहीं था, और वो 2x2 के संदल पर बैठते थे। अगर हमको अगर 2x2 के संदल पर अमृत बेला करने को बिठाया तो क्या होगा, सोचो आप, कोई चांस है क्या निद्रा को, वो डायरेक्ट ही जाएगा, समझा। न पीछे को चांस है, न दोनों साइड को चांस है, चांस ही नहीं है। संदल पर बैठ के अगर बाप समान बनना है कुमारों को तो संदल पर बैठ करके योग करके दिखाओ, कुर्सी मत लो, समझा। चारों बाजू से कोई भी सपोर्ट नहीं होना चाहिए। अगर 91-92 में ब्रह्मा बाबा विदाउट सपोर्ट अगर योग करते थे भी और करवाते थे, एक एक घंटा बाबा ऐसा अमृत बोला का योग कराता था तो खींचता था, कई माताएं जो करंट देता था ना, तो कई माताओं को करंट सहन नहीं होता था, क्योंकि बाबा जब दृष्टि देता था एक एक को, योग में क्या होता है एक एक आत्मा को दृष्टि देनी होती है। आजकल देखने में आता है कि कोई ऐसा योग करते कोई क्या करते कोई, लेकिन योग जो है एक को दूसरे ने दृष्टि देना चाहिए। जो यहाँ बैठता है उनका कर्तव्य है कि सामने वाले एक एक के दृष्टि को दृष्टि मिलाना, क्योंकि दृष्टि द्वारा ही पावर ट्रांसमिट होती है, दूसरा कोई भी तरीका नहीं है, दृष्टि से ही पावर। नजर से निहाल किंदा स्वामी सद्गुरु, सदगुरु स्वामी ने आत्मा को जो निहाल किया वो नजरों से निहाल किया है, इसीलिए नजर से नजर मिलाना ये योग में बहुत बड़ा विषय है। आंखें बंद करने की बात ही नहीं है, पूरी आंखें खुली होनी चाहिए, दरवाजा खुला होना चाहिए तो कोई अंदर आएगा ना। बाबा को आपको शक्ति देने की है और आप दरवाजे को लॉक बना करके बैठे हो, वो कैसा एंटर होगा। इसीलिए योग में आंखें पूरी खुली होनी चाहिए, उसको दूसरा कोई उपाय नहीं है। अच्छी तरह से बाबा के साथ कांटेक्ट होना चाहिए, ऐसी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, समझा। मीरा की बात, हम मीरा है ना, ऐसी लागी लगन बाबा के साथ, ऐसी लगन लागे समझा कि सिवाय हरि नाम के उसको कुछ याद ही नहीं, गली गली में वो याद करती थी, हमारी यादगार है। हम गली गली में जहां जहां जाएंगे बाबा 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 ही करना चाहिए, और ये हमको बाबा 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 अगर हमारे मुख में होगा ना तो हर बात का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। हर ताले की चाबी एक ही है, कौन सी, कौन सा भी ताला लगने दो, घर वाले आपको बहुत सता रहे हैं, सताने दो, उनकी चाबी खोलने का, उनका ताला खोलने की चाबी कौन सी है, बाबा को और दृष्टि दो, माँ कितनी भी गर्म होने दो, समझा। ऐसे प्रेम से दृष्टि दो और अंदर से कहो बाबा बाबा, तो ठंडे हो जाएंगे। जा पिताजी भी ठंडे हो जाएंगे। अरे सबको ठंडे करने की चाबी हमारे पास है। बाबा नाम की चाबी बड़ी जबरदस्त चाबी है। कोई भी ताला लाओ, क्या कोई भी ताला लाओ, उसको खोल देंगे। भाई अंदर से चाहिए, क्या चाहिए? ऊपर ऊपर का नहीं चाहिए, अंदर से, दिल से निकले बाबा हर पल, जीवन हमारा बना दिया। जब दिल से, अंदर से जब बाबा निकलता है तो जीवन बनता है। परमात्मा को ऊपर ऊपर का नहीं चलता है, उसको तो जिगरी जिगरी प्यार चाहिए। जब हम योग में बैठते हैं तो योग में बैठने की भी विधि क्या है? योग में आप बैठे हो उस समय आपकी स्थिति कैसी होनी चाहिए, समझा? जब कभी बाबा के कमरे में जाकर के बैठते हो तो ऐसी बाबा की महिमा करो जो जिगर की सारी बातें, आपकी दिल की सारी बातें बाबा के सामने आप प्रत्यक्ष करो। बाबा आपके साथ बात अवश्य करेगा। ये मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया है। क्या हुआ, हमने दीदी जो मनमोहिनी दीदी थी ना, वो मनमोहिनी दीदी वो बाबा के साथ बहुत समय नजदीक रही हुई थी। दादी प्रकाशमणि तो सेवा के कारण बंबई में थी। मम्मा जाने के बाद मम्मा के स्थान पर बाबा ने मनमोहिनी दीदी को मधुबन में बुला करके रखा था, और हर एक्टिविटी के समय मनमोहिनी दीदी जो है वो हमेशा बाबा के साथ रहती थी। इसीलिए आप कोई भी अव्यक्तवाणी निकाल करके देखो कि बाबा अव्यक्तवाणी पूरी करने के बाद किसके साथ बात करता था? मनमोहिनी दीदी के साथ बाबा बात करता था। बाबा हमेशा दीदी दादी कहता था, दादी दीदी नहीं, वो तो हमने व्यवस्था के लिए कहा है, बाकी बाबा के डायरी में दीदी का नंबर बहुत आगे था। तो जो बड़ी दीदी थी, तो दीदी को मैंने, हमको सेंटर बनाने का था। 1980 की बात है, 1980 में सेंटर बनाने का था। जमीन के बारे में बहुत कुछ विघ्न आया, फिक्स हुआ, बड़ा विघ्न आया। हमने दीदी को जाकर के कहा कि दीदी ये सब फिक्स हुआ था, मैं आपको परमिशन लेने को आया था, लेकिन देखो एक बहुत बड़ा विघ्न आ गया है, वो ना कह रहा है। तो दीदी ने उस समय बड़ा मंत्र दिया जो मुझे सारे ईश्वरीय लाइफ में बहुत मदद किया। उस मंत्र ने, दीदी ने कहा कोई डरो नहीं, दीदी ने कहा जितना बड़ा काम, जितना बड़ा काम उतना बड़ा विघ्न, समझा? आपको पहले पहले बहुत बड़ा विघ्न आएगा, और वो जब आप पार करेंगे तो आपका बड़ा काम होगा। ऐसे नहीं कि बड़ा काम आया और हुआ गया, ऐसा नहीं होता है। जितना बड़ा काम उतना बड़ा विघ्न। तो ये इतना बड़ा विघ्न आपके सामने आया है, इसका मतलब ये काम होने ही वाला है, सिर्फ आपको ये विघ्न को पार करने का है। तो जो भी आपको कहना है तो क्या करो, दीदी ने कहा। दीदी वो ऑफिस के कमरे में बैठी थी, दीदी ने कहा जाओ और बाबा को पूछ करके आओ, समझा? अभी ये 80 की बात है, 1980 की बात है। मुझे कहा जाओ और बाबा को पूछ करके आओ कि बाबा ऐसा ऐसा हुआ है, अभी क्या करने का। तो मैं बोला भाई बाबा ने तो कब का शरीर छोड़ा है, और ये दीदी कहती है जाओ बाबा को पूछ करके आओ और मुझे आकर के बताओ बाबा क्या बोलता है। अभी बाबा क्या बोलता है कुछ, अभी कहा है दीदी ने तो मैं बाबा के कमरे में गया, कमरे में गया और बाबा के सामने बैठ गया। जैसे बाबा के सामने बैठा और ऐसी बाबा से दृष्टि ले रहा था और बाबा को सुना रहा था कि बाबा ऐसा सब हुआ था, सारी बातें वही सब फिक्स हो गया, और अचानक वो मालक जो है उसकी क्या बुद्धि में परिवर्तन आया, उसने जबरदस्त लेटर भेज दिया कि मैं ये कुछ करने वाला नहीं हूं, अभी बाबा क्या करने का। तो मैं देख ही रहा था तो बाबा के होठ हिलने लगे, बाबा के जो होठ है वो हिलने लगे। मैं देख रहा, मैं बोला अरे बाबा बोल रहा है ना, बाबा को बोलने का है। इतनी खुशी हुई, बाबा के ओठ हिलते हुए दिखाई दे। बाबा ने कहा बच्चे कोई बात नहीं, ये पेपर आएगा और जाएगा, आप निश्चिंत रहो। और मेहर को बहुत खुशी हो गई, मैं ऐसा नाचने लगा, मैं बोला बाबा ने बता दिया, कोई दिमाग में नहीं कुछ नहीं। और मैं क्या हुआ, भागते 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 गया और दीदी के पास गया, तो दीदी बैठी थी ऐसी इस गद्दी गदेले के ऊपर दीदी बैठी हुई थी। और जैसे मैं दरवाजे से आया तो दीदी बोली क्या बोला बाबा ने? तो मैंने कहा दीदी बाबा बोला आप निश्चिंत रहो, ये पेपर आएगा और जाएगा। तो बोले जीत हो गई तेरी, समझा, अभी ये तो काम हो ही जाएगा, समझा। तो ये जो बात है, समझा, ये दीदी ने सिखाया कि अगर दिल से हम बाबा के साथ बात करते हैं तो बाबा भी हमारे साथ बात करता है। कौन कहते नहीं करता? अरे एक्यूरेट बाबा आपके, मैं कल का मेरा अनुभव ऐसा इतना सुंदर है, इतनी बातें बाबा ने मेरे साथ की, बहुत अच्छे ऐसे डायलॉग चल रहे थे, डायलॉग के ऊपर डायलॉग, मेरा एक डायलॉग, बाबा का एक डायलॉग, बाबा का, मैं बोला बाबा एक कुमार है, मेरे को इतना समझाने का है, मैं ऐसा इसके ऊपर क्लास कराऊंगा, धारणा के ऊपर। ये बाबा ने कहा तुम इनको मोबाइल का इशारा दे दो, नहीं तो तेरे सारे क्लास पर पानी फिर जाएगा। ये जैसे बाबा ने ऊपर से टच किया कि वर्तमान माया ये है, इसका भी इशारा दो, भले बाकी जो भी सुनाने का है सुनाओ, लेकिन ये बाबा ने उस समय टच किया। और फिर बाबा ने कहा कि तपस्या में सांप को गले में बांध करके रखना पड़ता है, अभी सभी कुमार तपस्या कर रहे हैं, तो अगर गले में नहीं रखा तो कहां से भी आकर के डंक मारेंगे, इसलिए उसको गले में बांध के रखना पड़ता है। तो भले सब सबके गले में मोबाइल का सांप रहने दो, समझा, लेकिन याद रखो कि ये सांप है, कभी भी डसेगा, इसलिए बड़े युक्ति से उसका प्रयोग करो। नई दुनिया का नया साधन है और सबसे रिफाइंड साइंस का आज की दुनिया में सबसे चमत्कारिक साधन है मोबाइल। कभी ख्वाब में सोचा था कि 1000 लोगों के बीच में अमेरिका में कोई बैठा है और हम यहां से उसके साथ आराम से बात करते हैं, उसका मुखड़ा देखते देखते बात कर रहे हैं, क्या काम, क्या माया की कमाल है। तो इसलिए साधन करके यूज करो, डरने का नहीं है, डरने का नहीं, हम डरने वाले कुमार नहीं है, समझा, हम तो सांप को गले में बांधने वाले हैं, हम डरने वाले नहीं है, लेकिन सावधान भी रहना, उसका यूज भी करो, जो फायदे की बात है फायदे के लिए 100% साइंस के साधन को यूज करो, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। बाबा ने एक बात कही, लगन बाबा के साथ होनी चाहिए, अंदर से बाबा 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 बाबा, दिल से निकले बाबा हर पल, दिल से बाबा बाबा निकलना चाहिए। और याद रखो कि ये साइंस के सभी साधन अंतिम समय में फेल हुए होंगे। ये जो बिजली है वो बिजली चली जाने वाली है, आज के दुनिया के 80% सुख, इस दुनिया के 80% सुख ये बिजली के ऊपर आधारित है। किस पर आधारित है? एक बिजली चली गई तो इंसान फिर आश्मयुगात जाईल, पुनः दळणाने जाते घेऊन बसावं लागेल, समझा, आणि ते जाते काय एक सोपं नाही आहे, समझा, ते जात्यात जर अडकलं ना तर खालचं काढता येत नाही, वरचंही काढता येत नाही, समजा, आणि दोन्ही उचलता येत नाही ना, तेवढं जड असतं, ते चक्र, खालचं चक्र आणि एक वरचं चक्र, आता त्याला जर काढायचं असेल, त्याच्यातून जर सुटायचं असेल तर एक तर वरचं चक्र उचललं पाहिजे, ते उचललं जात नाही, खालचं उचलावं तर खालचंही उचललं जात नाही, पिसणं मात्र 100% ठरलेलं आहे। पिसायचं ते दुनियात अशीच पिसली जाणार आहे ना, तर आपण पिसता कामा नये या चक्कीमध्ये, याच्यासाठी कोणत्याही गोष्टीवर कधी प्रभावित व्हायचं नाही. कभी भी सायन्स के कितने भी साधन निकले, सुंदर सुंदर बंगल्यामध्ये तुम्हाला जायची वेळ येईल, सुंदर सुंदर 101 बढिया गाडी में आपको बैठने को मिलेगा, लेकिन कभी भी प्रभावित नहीं होना. ये सुंदरी दीदी की विशेषता थी. मैंने बहुत बार सुंदरी बहन जी को देखा कि कितने भी बढ़िया चीज आने दो, कितना भी बड़ा आदमी आने दो, बहन जी कभी किसी पर प्रभावित नहीं हुई. ये हमने प्रैक्टिकल में थोड़ा भी, हम तो गुदगुद करने लगते थे, वो बोलती थी ठहरो ठहरो जरा नीचे आओ, नीचे उतरो, समझा, हमको कौन मिला है, हमको कौन मिला है, बाबा मिला है, बाबा के सामने ये क्या है, ये सब फेल, कोई भी गाड़ी रास्ते पर नहीं चल सकेंगी और जो चलेंगी वो एक्सीडेंट करेंगी, समझा. तो ऐसी परिस्थिति में आपको कौन बचाएगा. गोवा की चीफ मिनिस्टर जो पर्रिकर है, पर्रिकरांचं फार सुंदर मनोगत आहे, ते गोव्याचे मुख्यमंत्री आहेत पर्रिकर. आज ते कॅन्सरनीग्रस्त अमेरिकेमध्ये त्यांची ट्रीटमेंट चाललेली आहे. तर त्यांनी त्या बेडवर असताना त्याने सांगितलं की आज माझ्याकडे काय नाही आहे, माझ्याकडे प्रचंड मोठी सत्ता आहे म्हटले. आज जगातल्या कोणत्याही माणसाकडून मी काहीही काम करून घेऊ शकतो. भारताचे ते संरक्षण मंत्री होते, गोव्याचे मुख्यमंत्री आहे, प्रचंड सत्ता माझ्याकडे आहे, पाहिजे ते मनुष्यबळ मी वापरू शकतो म्हटले. परंतु मला एकही मनुष्य आज उपयोगी पडू शकत नाही. त्या अमेरिकेच्या हॉस्पिटलमध्ये कॅन्सरची ट्रीटमेंट घेत असताना त्यांचं मनोगत, माझ्याकडे प्रचंड पैसा आहे म्हटले, करोडो अब्जावधी रुपये, अनेक माइन्सचे ते मालक आहेत, गोव्यात अनेक खाणी आहेत, अनेक जहाज आहेत, त्याचे ते मालक आहेत, कोट्यावधी अब्जावधी रुपयाची संपत्ती आहे. म्हटले आज माझ्याकडे एवढी प्रचंड संपत्ती आहे, आज माझ्याकडे एवढी मोठी सत्ता आहे, एक राज्याचा मी मुख्यमंत्री आहे, देशाचा मी संरक्षण मंत्री होतो, एवढी मोठी सत्ता, परंतु आज या घडीला रोज मृत्यू एक एक पाऊल टाकून माझ्या जवळ येत आहे, एक एक पाऊल टाकून माझ्या जवळ येत आहे, परंतु एवढी सत्ता एवढी संपत्ती याच्यापैकी काहीही मला उपयोगी पडत नाही. तर हे कुमारो कशाला पैशाचं मागे लागला, समजलं ना, एवढाच पगार झाला पाहिजे, धंद्यावर धंदे, धंद्यावर धंदे, कशाला धंदा, आता लई नाही लई नाही, पोटापुरतं दी तुकाराम महाराजांना किती अक्कल होती त्यावेळेला, समजलं ना. त्यांनी परमात्माकडे काय मागितलं, काही देऊ नको. कबीरांनी सुद्धा काय मागितलं, एवढंच दे की दोन टाईम खायला मिळेल, आणि घरात कोणी फकीर आला तर तो रिकाम्या हाताने जाऊ नये, एवढं फक्त मला दे, त्याच्यापेक्षा जास्त देऊ नको. मग आपल्याला एवढं पाहिजे कशाला. प्रत्येक कुमाराने स्वतःकडे पा दिलंय ना बाबाने तेवढं, दोन टाईम खायचं काही वांधा आहे का, हां, कोणत्या कुमाराचं आहे का सांगा बरं, त्याला इथे जगदंबा भवनमध्ये सेवेला ठेवून देऊ. काही दोन टायमाचा प्रश्न येणार नाही काय नाही, आणि अंतपर्यंत समजा कोणाला आहे का. अरे अंतिम जन्मामध्ये अंतिम पार्टमध्ये सुद्धा दोन्ही टायमाला आपल्याला मिळेल, एवढं बाबाने दिलंय, जे घालायचं आहे ते घालायला, जे पाहिजे ते दिलंय, जेवढं आवश्यक आहे ते सगळं बाबाने दिलंय ना आपल्याला. मग आता कशाला नवीन दुकानाचं उद्घाटन करता, समज. हे तुमच्या डोक्यामध्ये कुणी घातलं, आता ही दुकाने घालायची वेळ नाही आहे, समजा नवीन धंदे सुरू करायची वेळ नाही आहे. आता समय एकदम क्लोज आलेला आहे. लक्षात घ्या की परमात्माने साकार पाट 33 वर्ष प्ले केला, त्याच्यानंतर 69 ते 2018 पर्यंत अव्यक्त पाठ सुद्धा बाबाने प्ले केलाय. आता अव्यक्त पाठ सुद्धा क्लोज होण्याची वेळ आलेली आहे. आता पुन्हा बाबा अव्यक्त वाणी उच्चारण करतील अशी परिस्थिती नाही. ह्या सीझनमध्येच आपल्या लक्षात येईल आणि मागच्याही सीझनमध्ये शहाण्याला शब्दाचं मान लगेच समजलं पाहिजे ना इशारा की बाबा पुन्हा येऊन अव्यक्तवाणी एवढ्या मोठमोठ्या चालवील अशी परिस्थिती नाही आहे. बाबांना तो पाठ क्लोज करायचा आहे म्हणून कुठलंही ना कुठलं निमित्त बनतं आणि बाबाचं येणं कॅन्सल होऊन जातं. आता बाबा काही फारसे येतील अशी परिस्थिती नाही आहे कारण हा क्लोजिंगचा पिरियड आहे. अव्यक्त पाठ बाबा क्लोज करत आहे आणि आता निराकारचा रोल सुरू होईल. हे चेंजिंग आहे. साकारमधून बाबाने आकार पाठ कसा सुरू केला मी दृष्टीने पाहिलं, डोळ्या देखत पाहिलं की साकार कसा क्लोज झाला आणि आकार कसा सुरू झाला. फार वंडरफुल. कधी वेळ मिळाली तुम्हाला एक दोन तास सांगेल की कसं साकारचा पाठ क्लोज झाला आणि कसा आकारचा पाठ सुरू झाला. हे तर डोळ्याने पाहिलं. आता तुम्ही कदाचित त्यावेळेला नसाल परंतु तुम्हाला एक सांगतो की आकार मधून निराकारचा पाठ कसा सुरू होतोय याच तर साक्षी बना ना. काय बाबा येत नाही अलीकडे कशाला जायचं मधुबनला, समजलं ना. हे असे आळशी ब्रह्मकुमार लुंगा सुंगा ब्रह्मकुमार नाही बनायचं, समजलं ना. स्ट्रांग ब्रह्मकुमार पाहिजे, पॉवरफुल ब्रह्मकुमार पाहिजे. बाबा येऊ नये. बाबाला जे द्यायचं आहे अव्यक्त बाबा आल्यानंतर बाबा तुम्हाला जे देणार होता बरोबर तेवढं निराकार बाबा सुद्धा निराकार रूपामध्ये तुम्हाला देणार आहे. तुमची जोडी भरलीच जाणार आहे. त्याच्यासाठी बाबाच यायला पाहिजे असं काही नाही. झोली भर जाती है, पता नहीं पड़ता कैसी भर गई लेकिन झोली भर जाती है. तो झोली घेऊन जा मधुबनला. ती आपल्या सेंटरवर झोळी अडकून ठेवू नका. आपल्याच घरामध्ये तिला अडकून ठेवू नका. ती खाली झालेली आहे बरोबर आहे, पण तिला मधुबनला घेऊन जा. बाबा तिला भरणार आहे. आकार बाबा नाही निराकार बाबा तिला भरणार आहे. आता परमात्माला प्रत्यक्ष व्हायची वेळ आलेली आहे. आतापर्यंत डायरेक्ट इनडायरेक्ट बाबाने काम केलं. एकदा ब्रह्माचा आधार घेतला, एकदा गुलजारदादीचा आधार घेतला. आता कोणाचाही आधार न घेता बाबा काम करणार आहे हे तुम्ही पहा. यज्ञाची अशी अवस्था राहील की सांभाळणारं कोणीच नाहीये, जबाबदार कोणीच नाहीये, आणि यज्ञ मात्र जोरात ढंडाना पेटलेलं आहे, समजलं ना. आणि जोर जरा सेवा वाढतच राहणार आहे, भंडारा फुलच होणार आहे, कुठेही काय कमी पडणार नाही. सगळे म्हणतील बाबा सांभाळायला कोणीच नाही आहे आणि हे चाललंय कसं. आजही दळवी साहेब कमिशनर गेले मधुबनला, आम्ही फिरत होतो तर ते दोन दिवस फिरून ते म्हटले मी सगळं फिरून पाहिलंय पण मला अजून हे समजत नाही की हे चाललंय कसं. सगळीकडे जाऊन आलो, खाली आलो, वर आलो, ज्ञान सरोवर काय, पांडव भवन काय, बगीचा काय, सगळं हे शांतीवन हे. पण हे म्हटले हे चालवते कोण, हे कस काय चाललंय हे मला अजून काही समजत नाही आणि समजणारही नाही जोपर्यंत शिवबाबा समजायचं नाही. तर असं बाबा कोणाचाही आधार नसताना सुद्धा बाबाचा यज्ञ बाबाचं कार्य जबरदस्त चालणार आहे. अहो मी पाहतो आज मागच्या महिन्यामध्ये जवळजवळ 10 ते 15 सेंटरला जाण्याचा योग आला. सगळ्या ठिकाणी बांधकामं चाललेली आहेत, मजल्यावर मजले, ज्याचे एक आहे त्याचे दोन, ज्याचे दोन आहे त्याचा तिसरा, ज्याचे तीन झालेत तो नवीन प्लॉट पाहत आहे, समजले. काय म्हणजे म्हटलं हे काय काय चाललंय काही कळायलाच तयार नाही, कुणी थांबायलाच मागत नाही. म्हणतात विनाश जवळ आलाय आणि इकडे हे जोरात चाललेलं आहे. याचं कारण काय आहे? याचं कारण असं आहे की परमात्माला अनेकांचं भाग्य बनवायचं आहे. तो उगाच तिसऱ्या मजला नाही चढवत, समजलं ना. कारण त्याला बाकी आत्ता जी नवीन नवीन लोक आलेली आहेत त्यांचं भाग्य बनवलं पाहिजे ना. त्याला माहिती आहे संपून जाणार आहे विनाशात, परंतु त्यांचं भाग्य बनलं पाहिजे म्हणून बाबा तिसरा मजला चढवतो. तुम्ही जुन्याने काहीच देऊ नका, नवे बांधून मोकळं होतील. समजलं ना? तुम्ही म्हणणार की काय द्यायचं दरवेळेला, नका देऊ, बघा नवे कसं बांधून टाक. कारण त्यांच्यासाठी तर तो मजला चालला आहे. परमात्माला सर्वांच्या भाग्याची चिंता आहे, त्याला सर्वांचं भाग्य बनवायचं आहे. म्हणजे सगळ्या ठिकाणी कामं चाललेली आहेत. आता इतक्या स्पीडमध्ये चालतील आणि एक दिवस सगळं ठप्प होईल. म्हणजे असाही दिवस येईल, चेंजिंग मोमेंटचा दिवस आहे. याच्यानंतर साक्षात्कारी रोल निराकारमध्ये काय आहे, परमात्माने हा जो यज्ञ एवढ्या 82 वर्ष जो चालवलेला आहे त्याची दोन चाकं आहेत. एक चाक आहे दिव्य बुद्धी, दुसरं चाक आहे दिव्य दृष्टी. दिव्य दृष्टी आणि दिव्य बुद्धी याच्या आधारे सगळा यज्ञ चालवलेला आहे. ज्या वेळेला शिवबाबा आले यज्ञाची स्थापना केली तर पहिलं शस्त्र कोणतं वापरलंय, दिव्य दृष्टीचं. लगेच मुरली चालू केली नाही, लगेच आत्मा परमात्मा सुरू केला नाही. त्याने ब्रह्माला कसं तयार केलं, शिवबाबाने ब्रह्माला कसं तयार केलं, आपको पता है मैंने वन्नी को कैसे तयार किया. एका मुरलीत बाबा म्हणतात शिवबाबा, वन्नी म्हणजे पत्नी, मी नवरी कशी तयार केली, कसं एंगेजमेंट केलं ते बाबांनी सांग. कसं केलं, त्याला एकामागे एक साक्षात्कार करवली. पहिलं काय वापरलं बाबाने, साक्षात्कार. आणि तोही विष्णूचा, स्वतःचा साक्षात्कार नाही करवला, विष्णूचा साक्षात्कार. मग ब्रह्माचे डोळे उघडले की वा साक्षात विष्णू आपल्या डोळ्यासमोर. एक विष्णू नाही, 5-5 विष्णू, जगन्नाथपुरी, श्रीनाथद्वारे, बद्रीनाथ. समजलं नाही, सगळी विष्णूची मंदिर बाबाच्या पुढे आली. सुरुवातीला एकामागे एक साक्षात्कार करून ब्रह्माला जे दादा लेखराजचा ब्रह्मा बनवला. दादा लेखराजला ब्रह्मा बनवणं एवढं सोपं नव्हतं, त्याला असं ज्ञान सांगून तो बनला नसता. कारण त्यांनी तर 12 गुरु करून ठेवले होते. ते काय एक हे काय, समजलं ना? 12 गुरु असताना सुद्धा, 12 गुरु असताना सुद्धा आत्मा कशी होती, अशांत होती. काय होती, अशांत. 12 गुरु असताना सुद्धा आत्मा अशांत होती. मग आत्मा शांत केव्हा झाली, जेव्हा 13वा गुरु भेटला. आत्मा शांत केव्हा झाली, जेव्हा 13वा गुरु भेटला. म्हणून आपण गेल्यानंतर 13वा घालतो. समजलं ना? उगाच 13वा घालत नाही, कारण 13व्याशिवाय शांती नाही. 12 असेच जाणार आहेत. समजलं ना? तर अशा प्रकारे ब्रह्मा बाबाला सुद्धा हा 13वा गुरु शिवबाबा भेटला, तेव्हा त्याची आत्मा काय झाली, आत्मध्ये शांत झाली. नाही तर आत्मध्ये किती, तिला पहा ना, एक गुरु, दुसरा गुरु, तिथे नाही शांती मिळाली, तिसरा, चौथा, डझनानी गुरु केले. ती किती त्याला तहान किती लागलेली असेल. एका विहिरीचं नाही, 12-12 विहिरीचं पाणी पिऊन झालं तरी तहान काही शमली नाही. जे शिवबाबा आल्यावरच त्याची प्यास बुजली गेली. अशा प्रकारे दिव्य दृष्टी आणि साक्षात्काराच्या आधारे दादा लेखराजचा ब्रह्मा बाबा तयार झाला. आणि मग शिवबाबाने दिव्य बुद्धी वापरायला सुरुवात केली. जो आदी सो अंत, आणि त्याच्याप्रमाणे आता बराच वेळ झालाय का? हा, सुरू ठेवायचं का? साडेसात पर्यंत आता. ही जे साक्षात्कार करवले ब्रह्मा जे दादा लेखराजला, साक्षात्कार झाल्यामुळे विनाशाचं सुद्धा साक्षात्कार करावला शिवबाबाने, विनाशाचा सुद्धा साक्षात्कार करावला ब्रह्माबाबाला, नवीन दुनियेच्या स्थापनेचा सुद्धा साक्षात्कार करावला ब्रह्माबाबाला. आता दादी दीदी वगैरे हे जे आहेत ना, यांना सुरुवातीला एवढे प्रचंड साक्षात्कार व्हायचे की कुणीही त्या बाबाच्या कमऱ्यामध्ये हॉलमध्ये यायचं ना, कुणीही बहीण त्या कमऱ्यामध्ये आली तिने बाबाच्या दृष्टीला दृष्टी लावलेली लावली की तिवडूनच जायचे. ती लगेच मैं बस कृष्ण के साथ रास कर रही हूँ, ती रास करायला सुरुवात करायची. आणि ती काय 10-15 मिनिटं नाही, तासन तास ते रास करत राहायचे. म्हणजे बाबाला दृष्टी दिली का ती ट्रान्समध्ये जायची, त्याला साक्षात्कार व्हायचा, वैकुंठ पाहायची, त्याच्याबरोबर नाचायची. मग ते 2-2, 3-3 तास झाल्यानंतर मग तिला ते बाबाच्या पुढे आणायचे, बाबा तिच्या डोक्यावर हात ठेवायचे, तेव्हा कुठे ती खाली उतरायची. आणि उतरल्यावर मग काय म्हणायची की मला कशाला खाली आणलं. चांगली कृष्णाबरोबर रास करत होते, इथे कशाला आणलं मला. म्हणजे अशा प्रकारे अनेक माता बहिणींना असे प्रचंड साक्षात्कार झाले. बाबाच्या दृष्टीला दृष्टी दिली की तो वरच उडून जायचं असं साक्षात्कार व्हायचं. आणि त्याच्यामुळे हे सगळे बहिणी माता घरदार सोडून आले, उगाच नाही आले. समजलं ना? त्यांनी पाहिलं का इथे साक्षात श्रीकृष्ण आहे, साक्षात विष्णू आहे, साक्षात स्वर्ग आहे, म्हणून सगळ्या बेड्या तोडून ते सगळं सोडून आले. अरे पुष्प शांता दादी बॉम्बेची, तिची मुलगी फक्त 8-9 महिन्याचीच होती ती मुलगी, तर ती मुलगी घरीच सोडून दिली आणि हे बाबाच्या मागे लागले. काय सोडवत ते 9 महिन्याचं मुलगा सोडणं, लोक पागल म्हणणार नाही ते काही शहाणे म्हणतील का. परंतु ते प्रभू प्रेम मे पागल हो गे, खेचा ना परमात्माने, खेचलं ना, त्याला पाहिजे होतं. तुम्ही जशी आहात, जशा परिस्थितीमध्ये आहात, तसं मी तुम्हाला घेऊन जाईल. मला जेव्हा बोलवायचं तेव्हा मी तुम्हाला आहे तिथून काढून घेईल. मोटरसायकल चालवा नाही तर मागे बसा, समजा ना. मला जेव्हा पाहिजे ना तुम्ही, तेव्हा मी तुम्हाला घेऊन जाईल असं बाबाचं वचन आहे. समजलं? सोडणार नाहीये कोणी कशाही अवस्थेमध्ये असा. बाबाला जेव्हा गरज पडेल तो खेचून आण. तसं या दीदी दादी सगळ्यांना साक्षात्कार झाले, भराभर सगळ्यांनी सगळं सोडून दिलं. आता आपण त्यावेळेला कुणी होतं का? आपण त्यावेळे कुणीही नव्हता, कुणी काही. जेव्हा आपण आलो त्यावेळेला दिव्यदृष्टीचा पार्ट क्लोज झालेला होता. दिव्यदृष्टीचा पार्टच त्यावेळेला चालू नव्हता. कोणता पार्ट चालू होता? दिव्यबुद्धीचा पार्ट चाललेला होता. आणि आताही दिव्यबुद्धीचा पार्ट जोरात चालू आहे. समजलं ना? तर दिव्यबुद्धीचा पार्ट आहे. आणि आता समय काय करतो? चेंज होतो आहे. एंडिंग चॅप्टरकडे आपण चाललेलो, 18व्या अध्यायाकडे, 2018 18व्या अध्यायाकडे आपण जात आहोत, हे लक्षात ठेवा. अंतिम चरणाकडे आपण जात आहोत आणि अंतिम समयाला सुद्धा प्रचंड साक्षात्कार होणार आहेत, भरपूर साक्षात्कार होणार आहेत. आणि हे आपल्यालाच होणार आहेत असं नाही आहे, ब्रह्मा कुमार कुमारीलाच होतील असं नाही आहे, तर अज्ञानी लोकांना सुद्धा, जे जे खरे खरे भक्त आहेत ना, जे खरे खरे भक्त आहेत त्यांना सुद्धा साक्षात्कार होणार आहेत. हे जे वारीला निघालेत ना एवढे हजारो लाखो वारकरी, ते कोणाचं दर्शन घेण्यासाठी निघालेले आहेत? विठ्ठलाचं दर्शन घेण्यासाठी निघालेले आहेत. तर ते ज्या वेळेला विठ्ठलाच्या मंदिरामध्ये जातील आणि विठ्ठलाच्या मूर्तीकडे पाहतील, तर त्यांना विठ्ठलाच्या जागेवर ब्रह्माबाबाचा साक्षात्कार होणार आहे. साक्षात ब्रह्माबाबा दिसेल, पुन्हा डोळे मिटले पुन्हा विठ्ठल, पुन्हा डोळे उघडले पुन्हा ब्रह्माबाबा. मग त्यांना कळेल की हेच विठ्ठल आहेत म्हणून. मग लक्षात येईल की बरोबर एका ठिकाणी आपण ह्या बाबांना पाहिलं होतं, कुठे पाहिलं होतं मग सेंटर धुंडाळीत येतील, मग फिर यहां क्यू लगेंगी, आता तिकडे आहे, तोपर्यंत आपली मजा आहे, लक्षात घ्या. एकदा का ती वारी इथे घुसली ना तर तुम्ही रस्त्यावर आणि ते आतमध्ये. म्हणून बाबाला आपली काळजी आहे, बाबाला आपली काळजी आहे का बा हे पक्के तयार झाले पाहिजे, संपूर्ण कर्मातीत झाले पाहिजे, म्हणून ती वारी तिकडे पाठवलेली आहे ना. पण लक्षात ठेवा, एक दिवस इकडे घुसणार आहे म्हणे. आणि हे प्रत्येक ठिकाणी होणार आहे. जी देवी ज्या दादीची यादगार आहे, समजा तुळजा भवानी जर जानकी दादीची यादगार असेल, तर तुळजा भवानीच्या मंदिरामध्ये ज्या वेळेला तिचा भक्त तिचं दर्शन घ्यायला जाईल, तर त्या ठिकाणी त्याला साक्षात जानकी दादी दिसेल. समजा डोक्यात एकदम प्रकाश पाडला जाईल का, ही तुळजा भवानी तर ही आहे म्हणून. येथे जगदंबा भवनमध्ये येऊन दादीला पाहून गेलेत, ते म्हणतील हे तर जगदंबा भवनमध्ये आहे तुळजा भवानी, चला तिकडे म्हणून. तर हे साक्षात्कार अंतिम समयाला होणार आहे. आणि या मंदिराला पावर दिलेली आहे परमात्माने. प्रत्येक देवीला देवतांना तिथे भरपूर गर्दी आहे ना, त्याला परमात्माने एक्स्ट्रा पावर दिलेली आहे. साईबाबाला सुद्धा पावर दिलेली आहे. साईबाबा काही करू शकत नाही, शिवबाबांनी त्याला काही पावर दिलेली आहे ती भक्तिमार्ग चालवण्यासाठी. परंतु जेव्हा त्याला निराकारमध्ये स्वतः प्रत्यक्ष व्हायचं असेल, त्यावेळेला त्यांची सर्व पावर बाबा काढून घेईल. कोणताही देव पावायचा नाही, कारण आता स्वतः परमात्मालाच पावायची वेळ आलेली आहे. समजलं ना. आता हे चिल्लर सगळं काढून घेईल बाबा, सगळ्यांची भांडवलं काढून घेईल, सगळी दुकानं ओस पडतील. समजलं ना. आणि ही हट्टी एकही है, हीच एक हट्टी आहे. म्हणून सगळेजण इथेच धाव घेतील, सर्वजण इथे धावत धावत येतील. आणि जे पाहिजे ते इथे त्या आत्म्याला मिळतील. साधारण भक्तच नाही, गौतम बुद्धाची आत्मा सुद्धा धर्म पिताओं को भी बाप के पास आना पडेगा. सभी धर्म पिताओं, इब्राहिमची आत्मा कुठे का असेना, जीजस क्राइस्ट की आत्मा कहा भी होने दो दुनिया में, आज वो कहा ना कहा पोप बन करके रही हुई है. आणि एकदा असं झालं होतं, कलकत्त्यामध्ये प्रदर्शनी लावलेली होती, कलकत्त्यामध्ये भरपूर मोठी प्रदर्शनी, फार मोठी जाहिरात होती, आणि सगळी ठिकाणी असे बोर्ड होते की परमात्मा सर्वव्यापी नाही आहे, परमधाम निवासी आहे, असे बोर्ड होते. जो अपने को भगवान कहते है वो हिरण्यकश्यप है. आणि नेमके शंकराचार्य आले होते कलकत्त्यामध्ये, आणि भली मोठी मिरवणूक चाललेली होती, आणि सर्वांना वाचायला मिळालं. शंकराचार्यांनी वाचलं की जो अपने को भगवान कहते वो हिरण्यकश्यप, ते तर आपली अनेक वेळा पूजा करून घेत होते स्वतःला, ब्रह्मा अहम ब्रह्मास्मी, मीच ब्रह्म आहे म्हणणारे. आणि त्याला जो बोर्ड वाचायला मिळाला जो अपने को भगवान कहते वो हिरण्यकश्यप है, तर ते लाल बुंद झाले शंकराचार्य. तसे होते गोरे पान, पण झाले लाल बुंद. लाल बुंद झाले शंकराचार्य. म्हणले किसने हे बनाया, कोणाचा हा कार्यक्रम आहे, कसली प्रदर्शनी आहे, काय? म्हणले ब्रह्मकुमारी की प्रदर्शनी आहे. क्या आहे म्हणले, ते म्हटले जलाओ ओ रखो ना, एक बी चित्र नाही रहना चाहिए म्हणले. इतके चिडले त्यांनी, त्यांच्या शिष्याला सांगितलं हे एकही चित्र दिसता कामा नये. मग ते लोक भराभरा गेली ज्या हॉलमध्ये चित्र प्रदर्शनी लावलेली होती, एक एक चित्र जाळून टाकलं, अख्खी प्रदर्शनी ती कलकत्त्याची जाळून टाकली. एवढी सगळी प्रदर्शनी जाळून टाकल्यानंतर तिथल्या बहिणीने बाबांना पत्र पाठवलं की हे बाबा, आज बहुत बुरी बात हुई कि हमने बड़ा प्रदर्शन लगाया था, बहुत शो पर्चे छपाए, सबको बांटे बहुत. तो बोले उस दिन शंकराचार्य की यात्रा निकल रही थी और उसने अपने बैनर आदि देखे और उसने कहा ये सब जला डालो, बाबा अपने सारे चित्र जल गए. तर मग बाबांना पत्र गेलं आणि बाबांनी मधुबनवरून पत्र पाठवलं. काय पाठवलं, की हे बच्ची तुम्हारी प्रदर्शनी बहुत पुरानी हो गई थी अभी नया सेट तैयार करो, क्या है अभी नया सेट करो और समझाना शुरू करो। मन आणि त्या वेळेला बाबांनी मग एक वाक्य खाली लिहिलं होतं, बच्चे यही पहिले शंकराचार्य की आत्मा आहे और अंत में ये तुम्हारे पास आकर के तुम्हारे पाव पर झुकेंगी, हे सुद्धा त्या वेळेला बाबांनी सांगितलं। तर अंतिम समयाला त्यांना सुद्धा इथेच यावं लागणार आहे, शंकराचार्याला यावं लागणार आहे, ज्युजेस क्राईस्टच्या आत्म्याला सुद्धा यावं लागणार आहे, बुद्धाच्या आत्म्याला यावं लागणार आहे, गुरु नानकाला सुद्धा यावं लागणार आहे। आणि परमात्माकडून शक्ती घेतल्याशिवाय त्यांची आत्मा परमधामला जाऊ शकत नाही, हे लक्षात ठेवा। कोणतीही आत्मा या पृथ्वी मंचवर 750 करोड आत्मा आज आहेत, एकही आत्मा वर जाऊ शकत नाही जोपर्यंत त्याला परमात्मा पॉवर मिळत नाही। आणि त्या बुद्ध क्राइस्ट नानक सगळ्यांना ती वर जाण्याची शक्ती, ती ऊर्जा घेण्यासाठी ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी अथॉरिटी जो है उसके पास आना पड़ेगा। एक ही हट्टी है, यहाँ उनको आना पड़ेगा और यहाँ से शक्ति लेकर के फिर वो आत्मा ऊपर जाएंगे। तो सगळ्यांना इथेच भरायला यावं लागणार आहे, हे बाबांनी सांगितलेले। मग जर सगळ्यांना इथेच यावं लागणार आहे तर आपण जरा जवळ या ना, काय करा, बाबाच्या जवळ या। तुम्हाला सांगितलं ते जात्याची गोष्ट, ते जातं जे असतं ना जातं, तर त्याचं कामच आहे ते सगळं धान्य काय करायचं, पिसून काढायचं। तर ये विनाश की भी चक्की आयसी आहे, विनाशची ज्या वेळेला चक्की फिरल ना तर ते कोणाला मागे पुढे पाहणार, जो सापडेल त्याला पिसून काढणार आहे। मग तो रस्त्यावर असू, घरात असू, नाही तर दुकानात असू, कुठे का असेना, जो सापडेल त्या चक्कीमध्ये सबको पिस जाना ही है। परंतु त्या जात्यामध्ये काही दाणे शिल्लक राहतात, ते कोणते दाणे शिल्लक राहतात, हा जे खुंटीच्या जवळ आहे, काय आहे, ज्या खुंटीच्या जवळ जे दाणे आहेत ते काही पिसले जात नाही, बाकीचे पिसले जातील। तर आपण कोणत्या दाण्यामध्ये असायला पाहिजे, शिव बाबाची खुंटी काही सोडू नका, जाम आवळून ठेवा, काही का होईना, समजा या खुंटीच्या जवळ राहिलो तरच वाचू, अन्यथा पिस जाना पडेगा। इसीलिए अभी एक बाबा दूसरा नकोय। अच्छा, ओम शांती।